एक मौके पे मजलिस में खजूरें खाई गई, आप मजाक के तौर पर गुठलियां निकाल निकाल कर हजरत अली के आगे डालते रहे। आखिर में गुठलियों के ढेर की तरफ इशारा करके इनसे कहा, तुमने तो बहुत खजूरें खाई। उन्होंने कहा, मैंने गुठलियों समेत नहीं खाई। वो भी तो फिर आपके दामाद थे ना, और आप ही के चचा के बेटे भी थे। गजवे खंदक के मौके पर एक वाक्य की वजह से हजूर खूब हंसे और आपके दांत यानी नवाजिस तक दिखाई दिए, ये साइड के दांत जो होते हैं। हुआ ये कि आमिर के वालिद साथ तीर फेंक रहे थे, एक दुश्मन फर्द जद पर था, मतलब एक दुश्मन था जो उनकी जद में आ रहा था। वो ढाल बड़ी फुर्ती से चेहरे के आगे सामने रख लेता। साथ के तीर कारी नहीं बैठ रहे थे। आखिरी बार साथ ने तीर कमान चढ़ाया और ताक में रहे कि मौका मिले तो छोड़ दें। इसने जूं ही ढाल से सर निकाला, तीर सीधा पेशानी में पेवस्त हो गया। इस बुरी तरह चकराकर गिरा के टांगे ऊपर को उठ गईं। बाद के लोगों को इस रंगे मजाक का हाल सुनकर ताज्जुब होता था, क्योंकि एक तो मजहब के साथ तकश्शुफ का तसव्वुर मौजूद है, यानी सख्ती का कह लीजिए, और खुदा परस्तों और मुत्तकियों की हमेशा रोनी सूरतें और खुश्क तबीयतें लोगों के सामने रही हैं। दूसरे, हजूर की इबादतें रब, हजूर की खशियत, हजूर की भारी जिम्मेदारियों और आपके तफक्कुरात का ख्याल करते हुए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इस नमूना इंसानियत ने इन मुस्कुराहटों के लिए जिंदगी के नक्शे में कैसे जगह पैदा की। चुनांचे इब्ने उमर से पूछा गया, क्या रसूलुल्लाह के रफका यानी दोस्त भी हंसा करते थे? उन्होंने फरमाया, हाँ हंसते थे, और इनके दिलों में पहाड़ से ज्यादा ईमान था, यानी ईमान बहुत ज्यादा था, फिर भी हंसते थे। यानी हंसी दिल लगी ईमान और तकवा की नकीय से, यानी उसका नक्स नहीं है या उसको तोड़ती नहीं है। तीरों का निशाना बतौर मश्क करते हुए दौड़ते थे और बाहम दिगर हंसते थे। ये कतादा की रिवायत है। नमाज़े सुबह के बाद मजलिस रहती और इसमें जाहिली दौर की बातें भी छिड़ती और सहाबा के साथ रसूलुल्लाह खूब हंसते। बच्चों से आपकी दिल लगी करने के वाक्यात भी हम बयान कर चुके हैं। इसके अलावा घर में अपनी बीवियों के साथ भी हंसते हंसाते थे। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइली भी थे, हंसते भी थे। अब जब हंसने की बात होती है और एक दूसरे के साथ अच्छे मामले की बात होती है, तो उसके साथ अब एक और चीज़ है, और वो क्या है? क्या तफरीह कर सकते हैं? लिख के देखें ज़रा, तफरीह, तफ़ील, फ़राहा, खुश होना, फरहा। अब वो हमने तफरी के नाम पे जो कुछ किया हुआ वही सबने अपना अपना बोल दिया है, लेकिन तफरी क्या होती है? चेंज, जो आम तौर पे आप कर रहे हैं ना वो नहीं करना, उससे डिफरेंट करना है, ये मुराद है। तो तफरीहात क्या है, इस पे एक लेक्चर है, तफरी का इस्लामी तसव्वुर, अगर आपको सुनना हो। बस लोग कहते हैं इस्लाम बोर है, क्या हम खुश नहीं हो सकते, क्या करें, तो उस पर मैंने काफ़ी डिटेल से उसको डिफरेंट मजाहब के साथ रिलेट करके बताया था कि तफरीह का इस्लामी तसव्वुर इतना जामे और इतना खूबसूरत है कि उसके बाद बंदे को किसी और चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होती अपनी ज़िंदगी में। तो मुतवाजन ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ तफरीहात जायज़ हदूद में है। मजाक की तरह ये जुज़ साकत हो जाए तो ज़िंदगी बोझ बन जाती है, और जिस निज़ामे हयात में तफरीहात की गुंजाइश ना रखी गई हो, इसे कोई माशरा देर तक उठा नहीं सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ तफरीहात पसंद थी और जायज़ हदों में इनके लिए रास्ते निकाले, ज़िंदगी बोर हो जाए। देखिए तफरीह पता क्या होती है, चेंज। आप रोज़ घर में रहते हैं ना, तो किसी दिन निकल के बाहर घूमने चले गए, ये तफरीह है। शहरों वाले लोग तफरी के लिए जंगलों में आते हैं, जंगलों वाले शहरों में आते हैं, पहाड़ी इलाकों के लोग मैदानी इलाकों में जाते हैं, मैदानी इलाकों वाले पहाड़ों में जाते हैं। तो तफरी जो है ना, चेंज का नाम है, आप ये कह सकते हैं, और ये इंसान को रीअसेस कर देती है, रिफ्रेश कर देती है। शख्सी तौर पर आपको बाग़ों की सैर का शौक था, माशाल्लाह, नेचर लवर। कभी तनख्वाह और कभी रफका के साथ बाग़ों में चले जाते और वहीं मजलिस आराई भी हो जाती, यानी आउटडोर लर्निंग। तैरने का मशगला भी था और अहबाब के साथ कभी कभार तालाब में तैरा करते, दो दो साथियों के जोड़ बनाए जाते और फिर हर जोड़ के साथी दूर से तैर कर एक दूसरे की तरफ आते। एक मौके पर अपना साथी हजूर ने जनाब अबू बकर सिद्दीक को पसंद किया। आ रहा इतना लाइवली तसव्वुर जहन में कि आप स्विमिंग भी करते थे? आप कहेंगे वाह। वक्फे के बाद बारिश पड़ती तो तहबंद बांध कर फुहार में नहाया करते, कभी तफरीहन किसी कुएं में पाँव लटका के इसके धाने पर बैठते। इतना मसरूफ इंसान और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस में इंसान हो और इतना लैयर मूड हो, ये वही हो सकता है जो अपने मामले अल्लाह के हवाले करें कि अल्लाह ताला तू अपने काम कर, मैं जरा थोड़ा सा सैर करूँ, मैं थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। और ये अच्छी बात है, ये हर वक्त जो आप और मैं अपने कंधों पे सवार रखते हैं ना, ये करना वो करना, हम पे इतने बोझ हैं, काम भी और मसाइल भी और प्रॉब्लम्स भी, कभी उतार के फेंके, कहते हैं ना इनको कभी उतार के एक साइड पे कर दो, अल्लाह के हाथ में अपना हाथ दे दें। दौड़ों और तीरंदाजी के मुकाबले कराते और अखाड़े में खूब दिलचस्पी से शरीक रहते, ऐसे मौक़ों पर हंसी भी होती। मुसरत के मौक़ों पर पसंद था कि दफ बजाई जाए या बच्चियाँ गीत गा लें। चुनाचीद की तकरीब पर हज़रत आयशा के पास दो लड़कियाँ गीत गा रही थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही लेटे हुए थे, अबू बकर सिद्दीक आए तो गुस्से में डांटा। अच्छा, अबू बकर तो ऐसे लगता है जब आते थे आयशा को डांटते थे, बाप थे ना तो वो फ़ायदा उठाते थे। और हमेशा याद रखे कि जो बहुत मिजाज शनास होता है ना, वो आपसे ज्यादा दूसरे के लिए आपकी केयर करता है। यानी आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही होती, लेकिन दूसरा जो होता है, जो आपको बहुत समझता है ना, वो महसूस कराता है। तो अल्लाह के नबी और अबू बकर का ऐसा ताल्लुक लगता है कि अबू बकर को हर वक्त ये गम पड़ा रहता था कि नबी सल्लम को बुरा ना लगे और आप मरवत में बोलेंगे नहीं। तो हज़रत आयशा को या दूसरों को अमूमन टोकते क्यों थे कि देखो अल्लाह के नबी मौजूद हैं और तुम उसकी मौजूदगी में ये काम कर रही हो। यहाँ भी यही हुआ, लड़कियाँ जो थी गीत गा रही थी, आप करीब लेटे थे, अबू बकर सिद्दीक आए तो गुस्से में डांटा कि नबी सल्लम के रसूल के घर में ये क्या शैतानी हंगामा मचा रखा है। इस पर आपने फरमाया कि इनको गाने दो। अब यहाँ देखिएगा, आपका पसंद का टॉपिक आ रहा है, इसलिए पूरा पढ़ लूँ तो फिर इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ जायज़ हो रहा है, कॉन्सर्ट भी और म्यूज़िक प्रोग्राम भी और गाने बजाने भी। तो ज़रा सा सब्र से पढ़ लें फिर बात कर लेते हैं। शादी ब्याह के लिए भी फरमाया कैसे मौक़ों पर दफ बजाई जाए। हज़रत आयशा की रिवायत है और हज़रत आयशा बयान करती है, मेरे पास एक अंसारी लड़की रहती थी, मैंने इसका निकाह कर दिया तो आपने फरमाया आयशा तुम गाने का इंतज़ाम नहीं कराती, हालांकि कबीला अंसार गाने को पसंद करता है। एक दूसरी रिवायत में गालिबन इसी मौके से मुतल्लिक ये आता है कि तुम लोग किसी गाने वाले को लड़की के साथ भेजते जो कहती अतैनाकुम अतैनाकुम फहयैना वहैयाकुम, हम तुम्हारे पास आए हम तुम्हारे पास आए, बस तुम भी सलामत रहो हम भी सलामत रहेंगे। ऐसी एक बज़्म अरूसी में बच्चियां गा रही थी, हज़रत आमिर बिन साद ने बस हाज़रीन से बतौर एतराज़ कहा कि सहाबियान रसूल है शुरकाए बदर, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। जवाब मिला, जी चाहे तो बैठकर सुनो वरना चले जाओ, हमें रसूलुल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है। तफरीहात में एक दरवाज़ा गुनाह और तईश, तईश ऐश से तईश की तरफ खुलता है, इसका आपने सदे बाप किया। यहाँ गाने का जिक्र है, अरब में रुबाब, रुबाब कहते सास को, बकसरत राज था मगर इसका नाम नहीं लिया, सिर्फ दफ का नाम लिया। गाने का मजमून देखिए तो कोई शोही नहीं, कोई जिनसियत नहीं, यानी कोई सेक्सुअल थिंग्स नहीं कि लड़के लड़की की मोहब्बत और जुल्फों की बातें और आंखों से जाम पिलाने की बातें। उनके गाने कौन से होते थे? जिहाद पे प्रवोक करने वाले। और मैं आपको एक जुमले में बताऊँ तो शायद बात वाजे हो जाएगी, मिल्ली नगमे, कौमी तराने, सुना हुआ ना ये नाम, बस ये होते थे अरबों में। मुजाहिदीन को जोश दिलाना और इस्लाम से मोहब्बत की बातें, बाद दफ़ा कसीदे होते थे। ये जो गंदे फोहज और इतने बुरे बोल के किसी के सामने इंसान सुन नहीं सकता, और जो ख़ास तौर पर शादियों के मौके पे छेड़खानियाँ और अजीबोगरीब से गाने बजाने, ये तो इस्लाम के मिजाज से नहीं मैच होते, ये तो लगवियात हैं, ये तो लहफ भी और लफ भी है। तो लिहाजा सीधे सादे थे, गुना की बात नहीं, सिर्फ मोहब्बत के सादा कलम है। ये भी नहीं फरमाया कि कोई कैना यानी गाने वाली लौंडी या गवैये को या कोई ताइफा बुला लेते, ताइफा क्या होता है, ग्रुप नहीं, सिर्फ छोटी बच्चियों में से कहा कि किसी मुनासिब लड़की को बुलाया। और ये भी याद रखे कि छोटी बच्चियां गाती थी, गुनगुनाती थी। वो लोग ज्यादती करते हैं जो इस्तस्ना को, इस्तस्ना कहते हैं एग्जेम्प्टेड, यानी जिस चीज़ से अल्लाह ने एग्जेम कर दिया, इस्तस्ना को फैलाकर कुल्ली असूल बना लेते हैं, यानी सिर्फ छोटी बच्चियों के मिल्ली नगमों को या मुजाहिदीन के किस्सों को या छोटी छोटी मोहब्बत की बातों को बुनियाद बनाकर बड़ी बड़ी जवान लड़कियाँ क्या लड़के और लड़कों में लड़कियाँ और औरतों में मर्द और मर्दों में औरतें और दोनों का साथ मिलकर नाचना कूदना, इसको ये कुल्ली असूल है, यानी कुल्ली बना लेते हैं कि शादी तो होती नहीं जब तक गाने बजाने ना हो। और इंतहा पसंदाना बातें करते हैं, ऐसे इज्तहादात की गुंजाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी। खुलासा क्या निकला, क्योंकि आगे शेर की बात है, चले उसको पूरा करके एंड पे बात एक ही साथ कर लेते हैं। इसके अलावा नबी सल्लम ने शेर से भी दिलचस्पी ली, अरब में जो शेर परस्ती राइज थी इससे तो आपको बोध था, यानी आपको पसंद नहीं थी शायरी, आपको नगमा इल्हाम की जाज़बियत इतना मौका ही ना देती। इल्हाम क्या, जो अल्लाह की तरफ से आपके दिल पे वही आती थी कि शेर व सुखन की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो, मगर दूसरी तरफ ज़ौके शेर से कुदरत ने महरूम नहीं रखा। अच्छे शेर यानी मकसद के लिहाज से उसकी कदर फरमाते, बल्कि कहना चाहिए कि आपने एक नया ज़ौक माशरे को दिया और एक नया मेयार मुकर्रर फरमाया। जाबिर बिन सुमरा का बयान है कि नबी सल्लम की खिदमत में 100 से ज़ायद मजालिस में शरीक हुआ हूँ, जिनमें जाहिलियत के किस्से भी होते और सहाबा शेर भी सुनाया करते। शायराने अरब के कलाम में से एक बार लबीद का ये मिसरा पसंदीदगी से पढ़ा, क्या था? अलकलु शैयन मा खलल्लाहुल बातिल, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ फ़ानी है। अब इस शेर में क्या हरज है, ये तो कुरान का पैगाम ही है ना। दूसरा मिसरा, वकुल्लु नईमिन ला मुहालति ज़ाइलिन, दुनिया की सारी नेमतें ज़ाइल हो जाने वाली हैं। हज़रत सरीत से एक सफ़र में यके बदीगरे फरमाइश करके उमैया बिन अबी सल्त के 100 शेर सुने। आखिर में फरमाया, ये शख्स इस्लाम लाने के करीब पहुंच गया था। बाज़ुकत खुद भी खसूसन मैदान जंग में बिला इरादा शेर के अंदाज पर कलमात फरमाए। हज़रत हसान और काब बिन मालिक से दुश्मनान इस्लाम के हजवी अशार के जवाब में शेर कहलाते, और कभी कभी हज़रत हसान को अपने मिंबर पर बिठाकर इनसे पढ़वाते और कहते कि ये अशार दुश्मनों के हक में तीर से ज़्यादा सख्त हैं। ये भी फरमाया कि मोमिन तलवार से भी जिहाद करता है और ज़ुबान से भी करता है। क्या पता चला कि आप एक बोरिंग इंसान नहीं थे। अब देखिए, इसमें जो शेर और गाने और ख़ास तौर पर शादी ब्याह के साथ बात हुई, तो मैं इसका खुलासा कर देती हूँ कि इस्लाम खुश होने का मौका भी देता है लेकिन उसकी हदें भी रखता है। जब इंसान अपनी खुशी के मौके पर अल्लाह ताला की सारी हदों को पामाल करने लग जाए और आपे से बाहर हो जाए, तो वो तो इंसानियत भी नहीं होती। तो औरत मर्द का जिसका वैसे ही पर्दा है, और अगर आप सोचें मर्दों में खड़े होकर कोई औरत नाचती है, या औरतें मर्द मिलके नाचते हैं, ये लड़के लड़कियां धमाल डालते हैं या वो हाथों में हाथ लेके नाचते हैं, तो क्या इस पे किसी फतवे की ज़रूरत है? क्या आपका मेरा दिल दिमाग गवाही नहीं देता? बचपन से हमने ये जुमले सुने हैं, इस्लाम के तो मिजाज से ये चीज़ें नहीं मिलती। तो लिहाजा हर चीज़ का एक तरीका है। अब शादी है तो क्या करें? मसलन शादी के मौके पर खुशी कैसे करें? सिर्फ औरतों की महफिल है और उस औरतों की महफिल में छोटी बच्चियां बैठकर छोटी छोटी बातें करती हैं, माँ बाप की मोहब्बत की बातें, जैसे बाद दफ़ा रुखसती के गाने हमारे यहाँ मशहूर हैं। अब उसमें भी एग्जैजुरेशन नहीं होना चाहिए कि मैके की कभी याद ना आए और ससुराल में तुझे इतना प्यार मिले। देखिए, ससुराल में जितना भी प्यार मिल जाएगा, मैके की याद फिर भी आएगी। ये खिलाफ फितरत बात है कि मैके की याद ना, ये झूठ है, ये कभी नहीं हो सकता। तो हद में रहते हुए अच्छे तरीके से थोड़ा सा हंस बोल लेना, थोड़ा सा मजाक कर लेना, ठीक है, इट्स ओके। बोरिंग नहीं है कि आप शादी के मौके पे भी आप बैठे हैं और आप दूसरों को फील करा रहे हैं कि हम हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। मसला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फ़र्क। यहाँ नहीं, मैंने अभी तक ये ट्रेंड देखा, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। हमारी शादियों में तो एक खड़बूंग ही मची होती है, शोर गुल होता है। आज से 8-7-8-8 साल तो मुझे भी अमेरिका से निकले हुए हो गए हैं ना, वहाँ की शादियों का आम ट्रेंड क्या है कि जिस तरह आप लोग यहाँ, हम लोग कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं ना, जैसे तकमील है या ईद पार्टी है, तो हमारा आपने देखा है कि माहौल क्या होता है इधर। जब तक क्लास हो रही होती है, हम सब इधर अच्छे माहौल में अच्छे कपड़े भी पहने हैं, कुछ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दर्स भी हो गया, क्विज हो गया, कभी हमने कोई वीडियो देख ली, फिर उसके बाद खाना खुलता है ना, एक ऑर्गेनाइज फंक्शन का इस्तेमाल महसूस होता है ना। वहाँ मोस्टली जो आप पढ़े लिखे दीनदार और कहना चाहिए कि महजब लोग हैं ना, उनकी शादियाँ वैसी होती हैं। पूरा जैसे आपका ये क्लासेस का टाइम टेबल बनता है, शादी का टाइम टेबल बनता है, जिसमें 15-20 मिनट की एक स्पीच होती है। मिसाल है कि कोई मर्द स्पीकर है, वो सबको इकट्ठी स्पीच देते हैं। मैंने खुद इतनी शादियों में दर्स दिए, मैं अभी भी देती हूँ। यूके में मैं एक स्पेशल शादी में गई, अभी भी मेरे पास इनविटेशन है इस मंथ में किसी दूसरे मुल्क की, कि सिर्फ आप आएँ और शादी के मौके पर वलीमे पर हम औरतों में आपका दर्स रखना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान में लास्ट जो ट्रिप मेरा गुजरा, उसमें सिर्फ एक इस दर्स की खातिर मैं शादी के लिए गई दूसरे शहर में कि उन्होंने रखा, और कितनी मुश्किल के बावजूद भी उन्होंने मेरा दर्स करा लिया, क्योंकि माहौल का जो असर होता है। तो अपनी इन शादियों को बामानी बनाएं। देखिए, 4-5 घंटे लगते हैं एक शादी में अमूमन, अगर कोई बेचारा किस्मत का मारा वक्त पे आ गया। अकलमंद वो हैं जो बिल्कुल शादी के खाने के खुलने के वक्त पे आए, लेकिन अब 3-4 घंटे आप लोगों को बिठाते हैं, राउंड टेबल मोस्टली होते हैं वहाँ, आप लोग बैठे क्या करें, कितनी देर बातें करेंगे? और उस वक्त में शादी के मौके पर जाके दर्स में ये तो नहीं बातें करनी होती कि ये हलाल और ये हराम, हल्की फुल्की बातें। मुझे आज भी वो शादियां याद है कि वो शादी बजाते खुद एक यादगार बन जाती है, हल्की फुल्की बातें। आप अपनी शादी से, अच्छा आपकी शादी पे क्या हुआ, आपको बच्ची के साथ छोटी छोटी नसीहतें, दुल्हन को बातें, लड़की की माँ आप क्या फील कर रही हैं, उस नाते से वो एक बात करें, फिर दूसरी बात आप कर दें। यानी एक आधे पौने घंटे का एक छोटा सा लाइट सा सेशन और एंड पे दुआ। क्या हमारी शादियों में ये नहीं हो सकता? हम इतने हड़बूंगे लोग हैं कि हम ऐसे वक्त में सिर्फ परेशान हो सकते हैं या कर सकते हैं, और या फिर बेकार काम करते हैं। तो खुश होने के भी राज तरीके होते हैं, कई नशीद हैं बगैर म्यूजिक के। मैंने खुद एक शादी में किसी की तैयारी की थी, तो उनको ऐसे नशीद ढूंढवा के, कोई अरबी का, कोई उर्दू का, कोई कोई जिसमें म्यूजिक नहीं है, तो उनको कहा था वो प्ले कर लें, खुश होने का कोई तरीका होता है कि आप जरूर आपे से बाहर हो जाएं। तो बहरहाल ये सारी चीजें आपको मुझे क्या दिखा रही हैं कि हमें हर मौके को उसकी मुनासिबत से मनाना है। खुशी के मौके पे खुश हो, कौन कहता है खुश ना हो, परेशान है तो उस परेशानी के मौके पे भी अच्छी बात करें। मौके की बात होती है, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें हिकमत दे दे। मैंने तो अपने लिए जिंदगी का एक असूल बनाया हुआ है, हर मौका दावा का मौका। मोमिन की जिंदगी का हर मौका दूसरे को दावत देने का मौका है। मैंने उनसे कहा कि आप शादी पे क्यों दर्ज कराना चाहती हैं, ये पाकिस्तान की बात है। जो हमारी यूके की स्टूडेंट है, उनके बेटे की शादी पाकिस्तान में हुई थी और उन्होंने पूरा इख्तमाम करके रखा। क्यों? कहने लगे उस्ताज़ अगर मैं दर्स का नाम लेकर बुलाती हूँ ना लोगों को तो आधों ने भी नहीं आना, तो शादी के दिन मैंने इसलिए दर्स कराना है कि उस दिन वो सारे आए होंगे। और बिलीव में इतना वहाँ माहौल, पहले जब मैं गई तो मैंने कह दिया दर्स नहीं होगा, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर में ऐसे कर करा के माहौल सेट कराया कि 15 से 20 मिनट की बात मैंने की उसमें, तो वहाँ अल्ट्रा मॉड भी उनकी रिश्तेदार थी आई हुई, तो वो भी बाद में आके मुझे कह रही थी कि हमने कभी ये बात पहले नहीं सुनी या इस तरह कभी नहीं सुनी ये बात ना। तो वो लोग जो आए सिर्फ शादी पे, तो अब उनको महरूम क्यों करते हैं? दर्ज के नाम पे तो आधे भी नहीं आते, कई मसले आ जाते हैं। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी की हर खुशी गम को कैश कराएं, और ये कफारे भी होते हैं। कमी बेशी हमारी ज़िंदगी में हमेशा होती हैं, तो जब हम किसी मौके में नेकी का काम कर लेते हैं ना अल्लाह के हुक्म से, फिर वो अल्लाह को भी पता है हम बंदे हैं, तो अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा। ठीक है, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।